ये है मेट्रो में पर्स के चोर अमीर शोहरत अमीर बिल्ली।
ये बताओ किसने तुम्हें मजबूर किया?
कमाल, कमाल ने मजबूर किया। वो ऐसा ही काम करता है, उसका रवैया।
मैंने तुमको हमेशा अपने बेटे की तरह समझा, लेकिन तुम हमेशा मुझसे भागते रहे हो। तुम हमेशा मुझसे भाग।
आपको याद है आपने कहा था अगर कभी कोई जगह ना मिले तो आपसे रब्ता करो।
कहाँ जा रही हो नरगिस?
जाओ भी।
तुमसे कह रहा हूँ मैं। सुनो, एक कदम भी अगर आगे बढ़ाए तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी।
ये तो मुझे दो, देखती हूँ मार सकते हो या नहीं।
ये कैसी जगह है?
देखो हमसे कहते हैं खाने में है, कुछ नए कफरा चलाते हैं, कुछ दिन तक यहीं रहो, मुनासिब जगह है।
क्या जा रहा है वो लड़के?
परेशान ना हो अमीर, अमीर परेशान ना हो, मैं हूं ना अमीर। अरे मेरे मौला,
आगे मत आना वरना कूद जाऊंगा।
अमीर ये क्यों कर रहे हो?
आगे मत आना, कसम से कूद जाऊंगा।
ठीक है कोई नहीं आएगा।
बाहर जाओ, दरवाजा भी बंद कर दो।
दोस्त रखते हैं उसे अल्लाह पैगंबर, जो अल्लाह नबी के हुक्म से कभी भागा नहीं। इस नियत के लिए दो चीजों की जरूरत है, सब्र और खुदा पर तवक्कुल। और तुम्हारी सोच शुक्रिया अदा करने के काबिल भी है, तुमसे कह रहा है। लेकिन इस फराज़ो नशीब से भरपूर रास्ते से गुजरना आसान नहीं। जो तुम्हारे पास है उस पर खुश रहो और खुदा का शुक्र अदा करो।
इंस्पेक्टर शिकेबा ने कहा कुछ भी कर रही हो छोड़कर फौरन ऊपर आ जाएं।
कुछ हुआ है क्या?
एक सेकंड इजाजत दीजिए।
आप जाइए, मैं आती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, ऊपर चलना है।
नहीं मैं नहीं आऊंगी, पापा आए हैं।
नहीं मेरी जान, अमीर साहब के पास चलते हैं।
अमीर,
हाँ?
अमीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हें क्यों यहाँ लाए हैं? तुम्हें तो फालतू में पकड़ा है। मैंने तो बहुत कहा कि मेरा कोई साथी नहीं है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी।
साथी? तो सच कह रहे हैं ये लोग कि तुमने चोरी की है? वो पैसे तुमने चोरी किए हैं ना? तुम दुकान में काम नहीं करते?
एक मिनट रुको इल्हाम, यहाँ से आने के बाद सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। इल्हाम,
सवाल तुम उनके नकीर नहीं पूछते, तुम उसूले दीन पूछ रहे हो मुझसे? अजीब मुसीबत है यार।
बताया क्या मुसीबत है?
कैसी मुसीबत में फंस गया मैं भी? मोहतरमा मेरी बेटी कहाँ है?
थोड़ी देर इंतजार
क्या है? क्या मतलब इंतजार कीजिए? अरे भाइयों मेरी बेटी कहाँ है? बेहयाओ मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है?
क्यों चिल्ला रहा हूँ?
अरे जनाब थोड़ा ख्याल कीजिए।
तुमने कौन सा ख्याल किया मेरी मासूम बेटी को पकड़ के यहाँ ले आए हो तुम? क्या जुर्म था उसने जो तुम उसे पुलिस चौकी में पकड़ के लाए हो? क्या किया था उसने?
तुम्हारी बेटी कौन है?
बेटी कौन? खुदा समझे तुम्हें, मुझसे पूछ रहे हो मेरी बेटी कौन है? नहीं मालूम मुझे, आप बताइए कब से फाल बेचना जुर्म हो गया है? उसे क्यों पकड़ा?
नहीं ये थाना है, नहीं तो अंदर डाल दूंगा तुम्हें।
तुमने मेरी बच्ची को पकड़ लिया, यहाँ लेके आ गए, उसके बाद कहते हो मैं शोर ना मचाऊं? क्या मतलब है इसका? क्यों
गुस्सा आ रहा है समझे? बहुत मारूंगा तुमको।
ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ, बस मुझे ये बताइए मेरी बेटी कहाँ है?
मैं कितना चिल्ला रहा हूँ मुझे भी गुस्सा आ रहा है, चलो अभी जेल में डाल दूंगा तुम्हें भी।
बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
तशरीफ लाइए।
अजीब मुसीबत में जा।
तू?
अरे नमक हराम, तो ये सब तेरा किया धरा है? इस छिपकली को तो अच्छा किया पकड़ लिया इंस्पेक्टर साहब। हमारी तमाम मुसीबतों की जड़ ये लड़का है, मुझे भी इससे शिकायत है।
देख लूंगा जलाल चर्सी।
दर्जा बदतमीज कहेंगे नाला है, अभी मुंह तोड़ दूंगा तेरा।
बिठा दो आराम से इसे।
क्या बकवास कर रहा है? यहाँ पे थाना है, खामोश रहो।
देख नहीं रहे क्या बकवास कर
रहा है?
पीछे हटो, पीछे हटो, नीचे हाथ।
बदतमीज कहीं का नालायक, इसका दिमाग ठीक करने की जरूरत है, बहुत बदतमीज है।
नीचे करो।
मैंने कहा पकड़ के रखो इसे।
जरा मुंह तोड़ दूंगा मैं।
क्या रोको, कंट्रोल करो, चलो बैठो उधर।
पीछे जाओ, मुझे पकड़ रहे इंस्पेक्टर साहब।
पीछे जाओ, थाना है यहाँ पर। बात सुनो बस मेरी,
एक हाथ उसके कान पे भी तो लगाए आप।
बहुत अजीब हो तुम, या तो बिल्कुल मुंह बंद किए हुए थे या इस तरह की बदतमीजी करते हो।
अभी आप जानते हैं क्या इंस्पेक्टर साहब इसके बारे में?
तो तुम इसे जानते हो?
ऐसा नमक हराम ये लड़का है, इतना बदतमीज, क्या आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब? मैं समझा नहीं, इस बीच में मेरी बेटी क्या क्या कसूर है? मेरी बेटी कहाँ है?
आ जाएगी।
खुदा तेरा सत्यानाश करे, बेड़ा गर्क करे तेरा। तूने क्या किया है? कहीं अपनी चोरी चकारी मेरी बेटी की गर्दन पे तो नहीं डाल दी तूने?
सलाम।
कैसा सलाम, कैसा पयाम? मैंने तुझसे नहीं कहा था इस बच्चे से कोई बात नहीं करना है?
खुदा के वास्ते,
खुदा के वास्ते।
परेशान ना हो, आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया।
जी नरगिस, जी नरगिस साहिबा, एक मिनट, कोई तुमसे मिलने आया है।
कोई खातून?
खुश आमदीद मोहतरमा, खुश आमदीद।
शुक्रिया आपका। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। मुझसे कोई काम था आपको?
तो तुम हो? नहीं, कमाल का सलीका इतना भी बुरा नहीं है। खूबसूरत, जवान, एक साल है जब से तुम आई हो कमाल अब मेरा नहीं रहा। मैं आगे नहीं आई, दूर से देखती रही, बस इंतजार करती रही। इन तमाम दिनों में मैं जानती थी कि मुश्किल कमाल की है कि मैं मान ना बन सकी, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी उदास हो जाए, जानती हो क्यों? इसलिए कि उसे चाहती थी। माँ बनने की आरजू में मरती रही लेकिन चुप रही, बूढ़ी हो गई। बैठो। लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा, मुझसे, अपनी बीवी से। अब वो सब कुछ जानता है, वो जानता है कि मुश्किल उसी की थी जो हमारे बच्चे नहीं हुए। इसीलिए तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह निकाल फेंक दिया। और तुम बताओ, एक औरत के जज्बात को समझ सकती हो? तुम्हारी खैरियत लेने आई हूं। आई हूँ तुम्हारी तबीयत पूछने। क्या कर रही हो सुकन? मुझे देखो, देखो किसका हक तुमने छीना है। नहीं, तुम छीना नहीं जानती, अपने को ज्यादा मासूम मत दिखाओ। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं भी तुम्हारी खैरियत तुम्हारी आंखों में देखूं। नहीं, ठीक नहीं। लेकिन मैं ठीक हूं। अब जब तुम्हें देख लिया तो फैसला कर सकती हूं। रहता है कमाल। कमाल तो अब ज्यादा जिएगा नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं अपने शोहर को अच्छी तरह जानती हूं। तुम्हें बेवकूफ और लावारिस देखा होगा, और तुम भी अगर तेज होती तो बेवकूफ ना बनती, इस वक्त यहां ना होती।
मैं कभी उनके पैसे के पीछे नहीं भागी।
तो फिर क्या?
साहिबान,
मैं भी उसके पैसों की लालची नहीं थी, लेकिन अब हूं। उसके पैसों के पीछे रहूंगी। हाँ, पैसे निकालूंगी, वो तो मेरे पास अब है नहीं, अब चाहिए भी नहीं। बचते हैं पैसे, आधे पैसे बाकी रह गए हैं, बाद में सड़क पे फेंक दूंगी।
मैं नहीं चाहती।
ये मत सोचना कि मुझे, काफी दिनों से मुझे मालूम है। वो समझता है जलाल उसका आदमी है। कहते हैं ना, नशे कभी वफादार नहीं बनते, वो सिर्फ पैसों का नौकर है।
मेरे बेटे की खातिर।
तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा भी है? तुम्हारा खुदा ज्यादा मेहरबान है। अब जब तुम्हें देख लिया तो ठीक हो गई। फिर मिलने आऊंगी।
जर्नल साहब, ये गलत बात है कि एक बच्ची अपने नशे बाप के साथ रहे।
लेकिन हम मजबूर हैं, इल्हाम को उसके हवाले करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं।
ताकि फिर से दिन रात अजीब गरीब लोगों के दरमियान भेजा करे इस शहर में, जहाँ हर तरह के लोग मिल सकते हैं, ताकि अपने ड्रग्स के पैसे निकाल सके।
मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि कोई सबूत हमारे पास नहीं है ताकि हम ये साबित कर सकें कि वो अपनी बेटी से गलत फायदा उठाता है और उसकी सरपरस्ती की सलाहियत उसमें नहीं है। आ जाइए
सर। जलाल होशियार को वॉशरूम में ड्रग्स लेते हुए पकड़ लिया है।
अरे वाह, तब तो सबूत गैब से मिल गया।
चार साल तो इफ्तिता से गुजार चुकी है।
अच्छा, ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ है
जी।
आप बता सकती हैं आखिरी शख्स जो यहाँ आया है कौन है?
ये हैं।
अजीब है। माफ कीजिएगा मैडम, एक मिनट।
क्या कर रही हैं? क्यों फोटो खींच रही हैं?
बैठे। सलाम अलैकुम।
माफ कीजिएगा अगर गलत वक्त पर फोन किया है।
ये कैसी बात हुई? इत्तेफाक से मैं खुद भी तुम्हें फोन करने वाली थी।
माफ कीजिएगा, मैं परेशान हूँ। आमिर की क्या खबर, कुछ हुआ?
खुदा पर भरोसा करो,
पहले खुदा फिर आप पर भरोसा है।
जैसा हो बताओगी। क्या हुआ, कुछ हुआ है? वहाँ कोई परेशान तो नहीं?
जी बहन, यहाँ तो जन्नत है, आपका एहसान है मुझ पर।
तो क्या है, क्यों इतना परेशान हो?
कमाल की बीवी यहाँ आई थी।
ओ।
जो कुछ उसके मुंह में आया मुझे कह दिया। खुदा की कसम, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है।
नरगिस साहिबा, रो नहीं, मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँ तो फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
ठीक है,
खुदा हाफिज। बिलाखर अपनी औकात दिखा दी तुमने।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब फालतू की बातें मेरे खिलाफ कर रहे हैं।
कैसी फालतू बातें कर रहे हो? तमीज से बात करो, वो भी एक पुलिस वाले से।
क्या बात है, फिर नाराज हो गए तुम? इतनी परेशानी तुम्हारे लिए वैसे अच्छी चीज नहीं है। ये बिलावजा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे।
इल्जाम लगा रहे हैं? तुम्हें जनरल साहब के पास ले जाऊंगा, वही समझ में आएगा तुमको।
यहीं पर है।
शुक्रिया।
कोई बात।
अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ?
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
जी मैं भी।
वाकई वो कल जो फोन पर बात हुई थी, मैं तो समझा। अच्छा चलो छोड़ो, एक मिनट गाड़ी में बैठोगी? गाड़ी में कहीं चलते हैं।
इतनी दूर से आए हो यही कहने के लिए? चलो साथ में गाड़ी में बैठते हैं।
ये तो कोई दूर नहीं है, मैं तो आपके लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ।
अच्छा, अंदर तशरीफ नहीं लेंगे?
नहीं, गाड़ी में ज्यादा ठीक है। बुरा ना मानिए तो मुझे थाना आना पसंद नहीं लगता।
ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो बस अपना कमरा पसंद है।
चलो तुम यही सोचो कि मैं यहाँ पर एडवाइस के लिए आया हूँ, ठीक है?
ठीक है, सुन रही हूँ।
ये सोचिए कि कोई जवान लड़का मेरे हालात और शरायत और माली एतबार के मुताबिक एक ऐसे घराने से जिन्हें आप अच्छी तरह जानती हैं, वो जवान समझता है कि वो लड़की इसके लिए मुनासिब रहेगी जो ताकत और मजबूत हो, साहिब इरादा हो, सबसे अलग हो, समझदार हो, सब उसे और उसके घर वालों को पसंद भी करते हों। क्यों? इसलिए कि वो जवान अपने घर वालों को अहमियत देता है। अब आप एक एडवाइजर की हैसियत से क्या मशवरा देंगी?
जवाब तो वाज़ेह है, उससे शादी करे जो उसके काम आए, जिसके यहाँ मुशाहबतों के साथ साथ इख्तलाफात भी पाए जाते हों।
अगर वो लड़की उसकी कजिन हो तो?
कुछ नहीं, उस सूरत में उसकी चचा जात की भी बात सुननी चाहिए।
ठीक है, आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ।
कह चुकी, भूल गए?
जी, लेकिन मैं कायल नहीं हुआ था।
ये तय नहीं हुआ था कि एक दूसरे को खाइल किया जाए। मेरे पास कुछ वजूहात हैं जो मेरे लिए अहम हैं।
कौन मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए मुनासिब है? कौन तुमसे ज्यादा मेरे लिए?
खुदा।
मैं तो तारीख की दुनिया नहीं बनना चाहता।
मैं चाहती हूँ मेरे दिल की दुनिया बाहर की दुनिया जैसी हो, मतलब मेरा दिल जो चाहे वो मैं करना पसंद करूंगी।
हो सकता है, वाकई हो सकता है, अगर जिद करना छोड़ दोगी तब हो सकता है। देखो बहुत सी मुशाबियत है जिसे तहजीब, खानदान, इज्जत की वजह नहीं समझ रहा पा रहा हूँ।
आप जानते ही क्या है, ये देखिए इस जगह का नाम थाना है, यहाँ मैं काम करती हूँ। वहाँ जहाँ आप अंदर आने से भी कतरा रहे थे, बचपन की बातों की वजह से दिल लगाना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो पढ़े लिखे हैं, कैसे उम्मीद रखते हैं कि अधूरी शनाख्त पर मैं हाँ कह दूँ? ये नहीं समझती इस काम में मेरी भी तौहीन है और आपकी भी।
मैं ये नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपनी चाहतों से बाज नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ एक ही तरह से मुनसरफ हो सकता हूँ और वो ये एक मुझे जेल में डाल दो।
अलबत्ता मैं एडवाइजर पुलिस हूँ, किसी को जेल में नहीं डाल सकती।
और मैं बहुत सख्त इंसान हूँ,
ऐसे मौके पर जिद्दी कहा जाता है।
मेरी नज़र में अगर खुद गर्ज का अल्फाज इस्तेमाल करती तो बेहतर होता। बहरहाल मैंने जो चीज़ चाहिए उस तक पहुंचा हूँ।
मैं कोई चीज़ नहीं हूँ।
नहीं नहीं, गलत फहमी ना हो मोहतरमा। देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि کبھی کبھی انسانوں کے لیے بعض چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اس کے لیے کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ۔
صحیح کہا، لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں کہ وہ جنگ ہماری خواہش کے مطابق شروع تو ہو سکتی ہے، لیکن ہماری خواہش کے مطابق نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔
اچھا، اتنی ساری تصویریں کس لیے؟
رپورٹ بغیر فوٹو کے کیسے ممکن ہے؟ کئی کھینچتے ہیں، بلاخر دو چار ٹھیک نکل آتی ہیں۔
لیکن کیوں صرف میری؟
اس لیے کہ آپ اس جگہ سب سے آخر میں آئی ہیں۔
کافی نہیں ہے؟
اب تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔
کیسی بات؟
اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کیسے یہاں آنا ہوا، کہاں سے آئی، کسی نے یہاں بھیجا ہے؟
کیوں آئی یہاں پر؟ ایسی خوشی راست نہیں آئی، سوچا کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، یہاں کا پتہ ملا اور یہاں آ گئی۔
نہیں، ایسے نہیں۔ دیکھو، اگر نہیں چاہتی میں تمہارا زیادہ وقت لوں اور تمہیں زیادہ پریشان ہونا پڑے، ایک سیریس انٹرویو دینا پڑے گا تمہیں۔ دیکھو، کبھی کبھی زندگی جیسا تم چاہتی ہو نہیں چلتی، جیسے اس کی طاقت تم سے زیادہ ہو گئی ہو اور تم جتنا بھی مضبوط بننا چاہتی ہو لیکن زندگی اتنا ہی پریشان کرتی ہے تم کو۔ ایسے میں لوگوں کے مختلف رد عمل سامنے آتے ہیں، تم کیا کرتی ہو جب زندگی تمہیں پریشان کرتی ہے؟ کیا کرتی ہو؟
معاف کیجیے گا، میں اس کے سامنے نہیں بول سکتی۔
پریشان نہ ہو، تمہاری باتیں ریکارڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دوں گی۔
خدا کے واسطے کہیں میرا نام تو نہیں آئے گا۔
پریشان نہ ہو، لکھ دوں گی انجان۔
ارے چائے ٹھنڈی ہو گئی، میں دوسری لے کر آتی ہوں۔
نہیں، رہنے دو، میں ٹھنڈی پیتی ہوں۔
تکلف کر رہی ہوں؟
نہیں، تکلف نہیں کر رہی۔ اچھا، یہ ایڈوائزر خاتون یہاں کام کرتی ہیں؟
نہیں
یا، تمہیں یہاں رکھنے کے لیے کوئی مرحلہ بھی طے کیا ہے؟ سلیکشن، انٹرویو، فائل پڑھنا یا کچھ بھی؟
نہیں، مجھے وہی یہاں لائی تھی، ان لوگوں نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔
بس اتنی آسانی سے؟
اتنی آسانی سے؟
تم جانتی ہو یہ جگہ کون چلاتا ہے؟
کچھ نیک انسان چلاتے ہیں، ان میں سے ان کے والد بھی ہیں۔
اچھا، اس خاتون کا نام کیا ہے؟
اندر آئیے،
پھویا صاحبہ آئی ہیں۔
وہی ہے۔
ہوشیار، ہوشیار، آپ باہر آ چلو۔ آؤ باہر آؤ۔ چلو،
انسپیکٹر صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب فالتو کی باتیں میرے خلاف کر رہے ہیں۔ میں یہ سب کام نہیں کرتا، میں اور نشہ، میں نشہ نہیں کرتا۔
یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، تو آج رات یہیں گزارنا، کل تمہاری فائل کوڈ بھیج دوں گا۔
ارے کوڈ، وہ کس لیے جناب؟ انسپیکٹر صاحب، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ کون سا جرم کیا ہے میں نے؟
یہ کیا ہے؟ میں نے اس تھانے میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں، مجرم بھی دیکھے ہیں، لیکن تم پہلے شخص ہو جو تھانے میں ڈرگز لے کر آئے ہو۔
نہیں،
تمہارا جرم یہ ہے ڈرگز ساتھ رکھنا۔
انسپیکٹر صاحب، یہ سب باتیں غلط ہیں، آپ سیدھے کیوں نہیں کہتے تھے مجھے یہیں دفنا دینا چاہیے؟ یقین کیجئے میں ایسے کاموں میں نہیں ہوں۔ عجیب مصیبت میں پڑ گیا ہوں میں، مجھے گولی ماری ہے، اس معصوم بچی پر رحم کیجئے۔
یہاں بھی اس معصوم بچی کا سہارا لینا چاہتے ہو؟ یہاں بھی اس معصوم بچی کا سہارا لے رہے ہو؟ بس کرو، بس کرو، شرم کرو تم۔
انسپیکٹر صاحب،
غلطی ہو گئی مجھ سے۔
اٹھو ٹھیک سے بیٹھو، اسے یہاں سے اٹھاؤ، دیکھو کیا ہو گیا ہے۔
खुदा की कसम इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, मेरे लिए उसने ये सब किया है। अगर कोई बात होती तो मैं खुद बता देती।
जानती हूँ उसने भी यही बातें कही हैं।
इलहम जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे ना ले जाएं, उसे ना ले जाएं। खुदा की कसम अगर वो चला गया तो मेरे हाथ से निकल जाएगा।
परेशान ना हो नायक साहिबा।
ए खुदा, किसी को जलील और बेबस ना कर, किसी को तन्हा मत कर।
क्या हो गया है, क्यों रो रही हैं?
मेरा बच्चा जेल जाएगा, इसला सेंटर।
अरे नरगिस बहन, तुम्हें क्या हो गया?
क्या हो गया है,
क्या हो गया?
जाइए
जाइए, नहीं दो मिनट को डिस्टर्ब ना करें, जाइए प्लीज, जाइए, नहीं जाइए,
आप सब चलिए अपने कमरे में,
जाइए
जाइए
जाइए। आप क्या कर रही हैं मोहतरमा?
पता नहीं चल रहा।
किसने आपको इजाजत दी फोटो लेने की?
मेरा नाम आवा है, रिपोर्टर हूँ, खाने मीर की रिपोर्ट बनाने आई हूँ। नरगिस साहिबा से भी इंटरव्यू लिया है, इसलिए यहाँ हूँ।
बगैर इजाजत के फोटो लेना आपका काम है?
सबकी तो नहीं, लेकिन जिसकी रिपोर्ट बना रही हूँ उसकी तो ले सकती हूँ। नरगिस साहिबा ने कहा है कि आप उन्हें यहाँ लाए हैं।
उसका कसूर नहीं है, उसे मैंने मजबूर किया था।
कंट्रोल करो प्लीज।
कुछ करे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ।
वादा करती हूँ, जो कुछ भी मुझसे होगा मैं कर पाऊंगी, दरह नहीं करूंगी, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ।
मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
हॉस्पिटल। जब ठीक हो जाओगे तो देखा जाएगा।
कब तक के लिए?
खुदा जाने। ड्रग्स तुमसे मिले हैं, अभी छोड़ेंगे नहीं।
मेरी बेटी।
क्या
इल्हाम?
पापा, पापा।
बोलो बेटी। मोहतरमा, आपसे गुजारिश कर सकता हूँ?
बोलो।
मेरी बेटी को नरगिस के हवाले कर दीजिए।
आपको तो उससे शदीद नफरत थी।
नफरत नहीं थी, कमाल का नौकर हूँ मैं, बस नरगिस को जानता हूँ जो मोहब्बती है, वो मेरी बेटी को बहुत चाहती है, मेरी बेटी भी नरगिस को बहुत चाहती है।
पापा, आप कहाँ जा रहे हैं?
बेटी, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा।
जाने बाबा,
बहुत जल्दी आऊंगा।
झूठ बोल रहे हैं, जल्दी वापस नहीं आएंगे।
नहीं बेटी, मैं जल्दी आऊंगा।
क्या ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब?
हाँ, जल्दी वापस आ जाएंगे।
पापा।
जाने बाबा, नरगिस के पास रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रोना नहीं, रोना नहीं।
ठीक है, चलते हैं। चले।
पापा जान, मुझे मेरा अब्बू चाहिए।
Thank you.
आओ मेरे साथ चलो, आओ।
कुर्बान जाऊं बेटी, मेरी गुड़िया, आंसू ना देखूं तुम्हारे, परेशान ना हो बेटी, रो नहीं मेरी जान, रो नहीं।
उसके बाप ने उसे आपके हवाले किया है, जब तक वो वापस नहीं आ जाते।
मेहरबानी की उसने। मैं अमीर से भी मिल सकती हूँ?
थोड़ा सा उससे काम लो।
मेरी जान, मेरी बेटी।
लीजिए सर, ये पिछले महीने की रिपोर्ट है तफसीलात के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। चलिए, जब तक कर्नल साहब की फाइल तैयार होती है, ये बताओ आमिर की क्या खबर।
आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कल के आर्डर के बिना पर आज रोकना होगा और कल उसकी फाइल कोर्ट भेजनी पड़ेगी।
और आपने आमिर के बारे में क्या सोचा है?
जनरल साहब, इत्तेफाक से सिलसिले में आपसे मशवरा लेना चाहती थी। मैं इस घर की तमाम बातें जानती हूँ। अमीर ने खुशी और तफरी की गरज से ये काम नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि उसके जज से भी बात करूँ। हम जैसे एडवाइजर्स की जगह कोर्ट के बाहर नहीं होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अमीर चूंकि अपनी माँ की सरपरस्ती करना चाहता था, अफसोस के साथ ये काम करने पर मजबूर हुआ है।
जी हाँ, मुश्किल यही है। जिंदगी भर की कोशिश एक रात में करना चाहता था।
अलबत्ता जनरल साहब सामाजिक कमेटियां भी जिम्मेदार हैं।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं समझती हूँ सबको तालीम देने और कमजोर और मुतासरा तबके की हिमायत के लिए किसी जिम्मेदार कमेटी की जरूरत है।
अच्छा, तो कर्नल साहब आपकी क्या राय है इसमें?
सर, आपकी इजाजत से मैं ये अर्ज करूंगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल इस तरह के जुर्म काफी कम हुए हैं, और आखिरी 3 महीने की रिपोर्ट अगर आप देखें तो समझ जाएंगे कि इन 3 महीनों में पूरे साल की निस्बत जुर्म कम हुए हैं। गाड़ी की चोरी और सरकारी जगहों से चोरी काफी कम है। अलबत्ता हमारे साथियों की मजीद दिक्कत की जरूरत है, और देखते हैं आगे क्या होता है।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए आपकी क्या राय है।
जी जनरल साहब, इस महीने की रिपोर्ट तो मीटिंग के आखिर में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हमारे अफराद हर जगह हैं, हमेशा से ज़्यादा दिक्कत के साथ। माफ़ कीजिएगा कि मैं चाहता हूँ मजीद ऑपरेशन की टेक्निक और अस्करी सहूलतें हमारे लिए फराहम की जाएँ। इसके आर्डर के मंतज़िर हैं, हमारे पास सिलसिले में तजावीज़ भी हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल, इन माँ बेटी की मदद कैसे की जाए, आप लोग क्या कहते हैं?
जनरल साहब, गालिबन तहरान में एक ऐसी जगह जहाँ बेसरपर्स खवातीन को रखा गया है। मोहतरमा पोया साहिबा इंस्पेक्टर इल्हाम पोया के वालिद वहाँ के बानियों में से हैं। अमीर की माँ को वहीं भेजा गया है, लेकिन खुद अमीर का भी कोई फैसला नहीं किया गया।
मतलब अगर कोर्ट भेज दिया तो उसकी मुश्किलें वहाँ शुरू होंगी फिर।
जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उसे मुनासिब फैसले तक रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस माँ और बच्चे के साथ क्या होगा? जिस घर के इंस्पेक्टर साहब बात कर रहे हैं खवातीन से मखसूस है, मतलब हम छोटे इल्हाम को वहाँ भेज सकते हैं नरगिस के पास, लेकिन अमीर का क्या होगा?
अलबत्ता हमको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सर अमीर को सजा मिलने के बाद उसे जिला सेंटर भेजकर हालात बुरे हो जाएंगे।
जी समझ सकता हूँ मैं। कभी कभी शिकायत नामा तफसील के साथ अगर तवज्जो से लिखा जाए और रिपोर्ट अच्छे अंदाज से बनाई जाए तो हमारे जज साहिबान भी तवज्जो देंगे। इस सिलसिले में आप लोगों का क्या ख्याल है?
जी इत्तेफाक से मैं चाहती थी इसी सिलसिले में अम्मी का लखब आपको बताऊं।
बिल्ली?
जी, मैंने खुद उसे मेट्रो में भागते हुए देखा था। वाकई अच्छा दौड़ता है।
थाने में भी जब भागा तो सब ताज्जुब कर रहे थे।
मुझे लगता है इस मौजू पर काम किया जा सकता है।
अच्छी बात, ये ठीक है। मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ किया जा सकता है।
जैसा कि तुमने खुद कहा, तुम्हारे बेटे ने जो किया तुम्हारे कहने पर किया है। उसने ये सब किया है ताकि तुम्हें कमाल हो उस गैराज के हालात से निजात दे सके।
तुम इस घर के सरपरस्त हो, तुम्हारी माँ तुम पर भरोसा करती है, तुम इस घर के मर्द हो अमीर।
तुम्हारे बेटे ने कहा है मर्द की तरह रहेगा, उसी गैरत और हिम्मत के साथ।
तुमने गलती की है, लेकिन अगर गलती कबूल कर लो तो अपनी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हो।
मैं खुद कल आपके साथ कोर्ट चलूंगी ताकि एक मुनासिब हुक्म के साथ इंशाल्लाह वापस आए।
तुम एक जुर्म के मुर्तकिब हुए और इस वक्त हर मर्द की तरह उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन तुम इस बात से गाफिल रहे कि तुम्हारी अम्मी नरगिस भी तुम्हारे साथ इसमें चल रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बस कबूल कर लो कि गलती की है, हम तुम्हारी मदद करेंगे इसका इजाला करने में।
वो जब भी देखेगा कि उसकी माँ उस पर तकिया कर रही है तो उसमें एतमाद और भरोसा जाग उठेगा। तुम भी उसकी गलतियों का उसके सामने इजहार मत करना। तुमको साबित करना होगा कि तुम्हारे लिए अहम है और जानती हो तुमने ये काम क्यों किया है।
जरूर, वादा करती हूँ, वादा।
तुमको अपनी अम्मी के साथ रहना चाहिए, उनका भरोसा हासिल करने चाहते हो या नहीं?
चाहता हूँ।
वादा करते हो?
पक्का वादा।
तो फिर एक मर्द की तरह उठो, जज साहब से भी कहना कि तुम्हें कबूल है कि गलती की, लेकिन तुम्हें मौका चाहिए ताकि साबित कर सको कि एक मर्द बन सकते हो, अपनी माँ की सरपरस्ती कर सकते हो। अमीर, ऐसा काम करो कि सबको तुम पर भरोसा हो जाए, खास तौर से तुम्हारी माँ को। यह काम कर सकते हो?
कर सकता हूँ, वादा करता हूँ, पक्का वादा, सच्चा वादा।
शाबाश।
चाहिए।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
माफ कीजिएगा, मैं नरगिस तवक्कुली साहिबा से मिल सकता हूँ?
नहीं जनाब, यहाँ मुलाकात मना है।
अगर मुमकिन हो बस एक मिनट दरवाजे पर ही आ जाएं।
नहीं माफ कीजिएगा।
अच्छा, तो मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि ये अमानत उन तक पहुँचा दीजिए।
क्या कहना है, कौन लाया है?
कमाल।
ठीक है।
जबकि तुम कर्ज खा नहीं हो लेकिन मैं तुम्हारा मकरूज हूँ। ये जिहून में एक 50 मीटर के मकान के कागजात हैं, शायद तुम्हारे और अमीर के लिए कोई मुनासिब जगह मिल जाए। मुझे माफ करना, इल्तिमा से दुआ, कमाल।
جج صاحب، اس گھر کے ماضی اور اقتصادی مسائل کے پیش نظر جیسا کہ آپ کو پچھلی رپورٹ میں اطلاع دی جا چکی ہے کہ پر بہت شرمندہ ہے، اور اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ سزا میں کمی کی جائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔
امیر کرامت اس سے پہلے بھی یہاں لائے گئے ہیں؟
نہیں جج صاحب، پہلی بار لائے ہیں میرے بیٹے کو۔
اجازت دیجیے وہ خود بولیں، اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، ہے نا؟
بولو۔
جی شرمندہ ہوں۔
امیر، بالآخر تم نے جرم کیا ہے، کچھ مال تم نے چوری کیا ہے، اب اس کا تو انکار نہیں کر سکتے ہو نا؟
جج صاحب، میں ایک ایڈوائزر کی حیثیت سے سلسلے میں کچھ کہہ سکتی ہوں۔
اجازت دیجیے قانونی سرپرست اس سلسلے میں کچھ کہیں۔
سچ بات یہ ہے جج صاحب، جب سے میرے شوہر کا ٹرک کے نیچے کچل کر انتقال ہوا، زندگی کی پوری ذمہ داریاں میرے سر پر آ گئیں۔ یہ امیر بچہ تھا، بہت کم عمر تھی اس کی، جب بھی کچھ ہوتا تھا تو اپنے آپ کو میرا سرپرست سمجھنے لگتا تھا، اس کام سے بھی میرے شانے سے کچھ بوجھ کم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے اس کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔
میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے دوسری شادی بھی کی ہے۔
اصل میں میں نے اپنے شوہر کے مالک سے نکاح کرنے پر مجبور ہوئی، کاش نہیں کیا ہوتا، میں نے غلطی کی اس بچے کے ساتھ۔
آپ جا سکتی ہیں۔
جج صاحب، اس کے شوہر کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، تنہائی اور بے کسی کا عالم، گیراج جیسے ایک سخت اور نامناسب جگہ میں رہنا، ایک عورت تو اس کے بچے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن امیر کرامت کی کل پونجی کیا ہے سوائے غرور اور جسارت کے؟ غلطیاں بچگانا تھیں، لیکن اس کا غرور، اس کام سے وہ صرف اپنی ماں کی پریشانیوں کو حل کرنا چاہتا تھا، جبکہ صحیح طریقہ نہیں اپنایا، لیکن اسے اپنے کیے پر شرمندگی بھی ہے، اور اب واقعی میں شرمندہ ہے۔
ٹھیک ہے امیر، تم کو سارے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، مطلب تم کو سرپرست پیسہ ادا کریں گی اور سب کی رضایت حاصل کرنی پڑے گی۔
جی جج صاحب، ادا کریں گے، سارے پیسے جتنے بھی ہوں سب ادا کریں گے۔
میں اس وقت آرڈر کر سکتا ہوں تاکہ تمہیں اصلاح سینٹر بھیج دیا جائے، تاکہ تمام شکایت کرنے والے تم سے راضی ہو سکیں، بس۔ لیکن انسپکٹر صاحبہ کے بیان کے مطابق میں کہوں گا کہ سیکیورٹی کے ساتھ تم اپنی ورزش جاری رکھو، تاکہ 12 دن بعد جو اصلاح سینٹر کی جانب سے دوڑ کا ٹورنامنٹ منعقد ہو رہا ہے شرکت کر سکو۔ امیر، اگر تم نے پہلی سے 5ویں پوزیشن حاصل کی اور وہ کورٹ میں پیش کر دی تو کورٹ بھی تمہیں معاف کر سکتی ہے۔